أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستو آپ کو میری طرف سے سلام آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی اپنے جیون میں سکھی اور سوستھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی اپنے پچھلے پروگرام سے اس بھاگ کو آرمبھ کیا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کسی نجس چیز کو پوتر کر سکتی ہیں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 10 پرکار کی چیزیں ایسی ہیں جو اپوتر کو پوتر کر سکتی ہیں۔ ان 10 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو کسی اپوتر کو پوتر کر سکتی ہے اسے جل یا پانی کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں اپنی بات چیت آرمبھ کی تھی اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا کے وہاں پر پروگرام ہمارا سماپت ہو گیا تھا۔ اب اس پروگرام میں ہم اسی کے بارے میں آگے بات چیت کریں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی یا جل 2 پرکار کا ہوتا ہے، یا وہ مطلق ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے۔ مضاف جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس جل کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کا رس ہو، یعنی کسی دوسری چیز سے لیا گیا ہو، یا کوئی دوسری چیز اس میں اتنی ماترا میں ملا دی گئی ہو کہ اس کو جل یا پانی نہ کہا جا سکے، اور جو پانی مضاف نہیں ہوتا ہے اس کو مطلق کہا جاتا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں پانی یا جل کہا جاتا ہے۔ اسی میں کچھ مسئلے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ مضاف پانی کسی بھی اپوتر چیز کو پوتر نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی ادھک ماترا میں کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی اپوتر چیز اس مضاف پانی میں مل جائے چاہے وہ ماترا میں کتنا بھی ادھک کیوں نہ ہو تو وہ اپوتر ہو جائے گا۔ جیسے کہ اگر ایک ٹینکر شربت میں یا دودھ میں ایک قطرہ بھی خون کا گر جائے تو پورا ٹینکر نجس ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی طہارت جیسے وضو یا غسل کسی بھی مضاف پانی سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ شربت سے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا ہے، گلاب جل سے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو مضاف کے بارے میں تھیں۔ اس کے علاوہ یعنی مضاف کے اترکت جو جل ہوتا ہے اس کو ہم مطلق کہتے ہیں، اور مطلق پانی کئی پرکار کا ہوتا ہے۔ پانی اگر ہم اپنی جیون میں دیکھیں تو پانی کئی پرکار کا ہمارے آس پاس ہو سکتا ہے، جیسے وہ پانی یا وہ جل جو آسمان سے برستا ہے، یا وہ جل جو زمین سے نکلتا ہے، یا وہ جل جو نہ آسمان سے برستا ہے نہ زمین سے نکلتا ہے۔ تو وہ جل جو آسمان سے برستا ہے اس کو ورشا کا جل کہتے ہیں، یا بارش کا پانی اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ جل جو زمین سے نکلتا ہے وہ 2 پرکار کا ہو سکتا ہے، یا تو زمین سے نکلنے کے بعد بہنے لگتا ہے جس کو ہم چشمے کا پانی یا جاری پانی کہتے ہیں، یعنی بہنے والا پانی، یا زمین سے نکلتا تو ہے لیکن بہتا نہیں، اپنے استھان پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ہم کنویں کا پانی۔ اب اگر کوئی جل اس پرکار کا ہو کہ زمین سے نکلے اور اپنے استھان پر ٹھہرا رہے تو اسے کہا جائے گا کنویں کا پانی۔ اگر کوئی جل اس پرکار کا ہو نہ زمین سے نکلتا ہو اور اپنے استھان پر ٹھہرا ہوا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے قلیل پانی، یعنی ایسا پانی اگر وہ قر سے کم ہے اور اپنے استھان پر ٹھہرا ہوا ہے تو اسے قلیل پانی کہا جائے گا۔ پانی 2 پرکار کا ہوتا ہے، یعنی یا قلیل پانی ہوگا یا کثیر پانی ہوگا، کثیر جس کو قر بھی کہا جاتا ہے۔ قر وہ پانی ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ اگر کسی برتن کو یا کسی ایسے استھان کو جہاں پر پانی کو اکٹھا کیا جائے، اکتر کیا جائے، اگر وہ لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں 3.5 بالشت अगर उनको नापा जाए, अगर 3.5 बालिश से अधिक हो या 3.5 बालिश या उससे अधिक हो लंबाई, गहराई और चौड़ाई, तो उसमें अगर पानी भर दिया जाए तो उसे कहा जाएगा ये पानी कुर है। ये हो गया नाप के लिहाज से, माप के लिहाज से। यानी अगर माप अगर हम नाप मापें तो 3.5 बालिश गहरा, 3.5 बारिश चौड़ा और 3.5 बारिश इसी प्रकार से होना चाहिए। लेकिन एक और भी तरीका है किसी भी पानी को कुर जानने के लिए। उसका तरीका ये है कि अगर वो किलो में अगर हम उसको तौलें तो उसका किलो 377 या 419 हो। अगर 377 से 419 के बीच में होता, यानी कम से कम, यानी या 377 या 419 किलो होता है, तो इस जल को भी कुर कहा जाएगा। और वो पानी जो कुर से कम होता है उसे कहा जाएगा कलील पानी। इसके बाद हम जब हमने अपने आप अपने प्रोग्राम में ये बता दिया और आप ये पहचान गए कि कलील पानी क्या होता है और कुर पानी क्या होता है, तो अब हम आपके सामने कलील या कम पानी के कुछ अहकाम बताएंगे। तो सबसे पहला हुक्म जो है, जैसा कि हमने मुजाफ पानी के बारे में भी ये बात बताई थी कि अगर मुजाफ पानी में कोई नजासत मिल जाती है तो मात्रा में चाहे जितना अधिक क्यों ना हो वो नजिस हो जाएगा, उसी प्रकार कलील पानी में है कि अगर कोई पानी कुर से कम है तो अगर उसमें नजासत मिल जाती है, अपवित्रता मिल जाती है, तो अपवित्रता के मिलने के साथ ही वो पानी अपवित्र हो जाएगा। इसी में एक बात और है कि अगर हम किसी चीज़ को कलील पानी से पवित्र करना चाहते हैं, जैसे ज़मीन है, कोई धरती है, अगर वो ढलवा हो यानी जो ढलान पाई जाती है उसके अंदर, अगर ऊपर की तरफ से पानी बहता है, कलील पानी ऊपर की तरफ से बहता है, उसका निचला हिस्सा किसी नजासत से जाकर टच हो जाता है, किसी अपवित्रता से मिल जाता है, तो अगर निचला हिस्सा मिलता है तो निचला हिस्सा ज़रूर अपवित्र होगा, लेकिन ऊपर का जो भाग था यानी जहाँ से पानी चला था और जहाँ तक अपवित्रता तक पहुँचा है, तो ऊपर का जो भाग है वो पवित्र होगा, सिर्फ़ और सिर्फ निचले का जो भाग है वो अपवित्र कहा जाएगा और ऊपर का भाग अपवित्र नहीं होगा। इसी में एक और बात है, वो ये कि वो कलील पानी जो अपवित्रता को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसका क्या आदेश है। कभी कभी ऐसा होता है किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया या कोई और अपवित्रता कहीं पर लगी हुई है, तो हम लोटे से या किसी और चीज़ से पवित्र करते हैं, तो वो पानी जो लोटे या किसी ऐसी चीज़ से डाला जा रहा है जो मात्रा में कुर से कम है, तो जो जैसे ही वो अपवित्रता या नजासत से मिलेगा वो स्वयं नजिस हो जाएगा। और जब नजासत को हटाने के बाद दूसरा पानी पवित्र करने के लिए डाला जा रहा है तो उसके लिए भी एहतियात ये है कि इंसान उस पानी से ही बचे और उसके बारे में भी नजिस का अंदेशा रखे और नजिस समझे उसको भी, यानी उससे भी दूर रहे, उसको भी प्रयोग में न लाए। उसके अलावा जब यह कलील पानी हो गया, जो हमने आपके सामने बताया कलील पानी तीन प्रकार, यानी तीन आदेश हमने आपको सामने बयान किए, तीन प्रकार से कलील पानी नजिस हो सकता है। कलील पानी के अलावा जितने भी पानी होते हैं, यानी कौन कौन से पानी, जैसे कि जो है बारिश का पानी, जैसे कि कुएं का पानी, ये सब के सब कुर के हुक्म में आएंगे, सब के सब कुर कहे जाएंगे। और कुर पानी यानी जो कलील नहीं है, जो जिसकी हमने मात्रा और जिसका किलो हमने आपको अभी सामने बताया, जिसकी मात्रा और जिसका किलो हमने अभी आपके सामने बयान किया है, कुर पानी उस समय तक, उस वक्त तक नजिस नहीं होगा, उस समय तक अपवित्र नहीं होगा, जब तक के, ध्यान देने वाली बात है, जब तक के नजासत के, अपवित्रता के मिलने से उसका रंग, उसकी बू और उसका स्वाद बदल ना जाए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नजासत, अपवित्रता मिले और उसके बाद हो, ऐसा ना हो कि अपवित्रता साइड में पड़ी हुई हो, उसके साइड में पड़े होने की वजह से उसका रंग बू बदल जाए, ना, जब मिले और उसके बाद रंग या बू या स्वाद उसका बदल जाए, तो एक कुर पानी भी, वो पानी भी जो कलील से अधिक हो, कुर या कुर की मात्रा से अधिक हो, वो पानी भी, वो जल भी अपवित्र हो जाया करता है। और दूसरी बात जो हम इस कुर के मसले में आपके सामने बयान कर सकते हैं वो ये है कि अगर कोई कुर पानी अपवित्र हो जाए तो उसको पवित्र किस प्रकार से किया जाएगा। तो उसके लिए ये है कि अगर कुर पानी या कुर जल अपवित्र हो जाता है तो उसको इस मात्रा में दूसरे कुर या दूसरे बारिश के पानी से मिला दिया जाए कि उसका रंग, उसका बू और उसका स्वाद बदल जाए। अगर ये बदल जाते हैं तो उसको कहा जाएगा ये कुर पवित्र हो गया है। और इसी में एक बात जो आती है वो ये है कि जो नल या जो हैंडपंप वगैरह जो हमारे घरों में होते हैं उनका क्या आदेश है, क्योंकि वो उसमें एक समय में कुछ पानी होता है, फिर हम खोलते हैं तो पानी निकलता है। वो जिस समय निकल रहा होता है उस समय वो कुर नहीं होता है, ना मात्रा के लिहाज से और ना किलो के हिसाब से। उसके बारे में हमारे फुकहा ये कहते हैं वो जल जो हमारे नलों में होता है या हैंडपम्पों में होता है, जिसका स्रोत, जिसका मंबा जिसे कहा जाए, अगर उस पानी से मिला हुआ है जो शहर की टंकी से आ रहा है, जो स्वयं कुर से ज़्यादा है, तो वो नल और वो हैंडपम्प जो ज़मीन से मिले हुए हैं या शहर की टंकी से मिले हुए हैं उनके बारे में ये कहा जाएगा, भले ही हमारे नल से निकलते समय वो थोड़ा पानी है लेकिन चूंकि उससे मिला हुआ है लिहाजा उसके बारे में भी कहा जाएगा ये कुर पानी है, उसके ऊपर कुर पानी के आदेश लगाए जाएंगे। उसके बाद जो बात आती है वो बारिश के पानी की बात आती है, कि हमने जैसा कि आपको बताया था कि पानी कई प्रकार का होता है जिसमें एक बारिश का पानी होता है। बारिश के पानी की कुछ विशेषताएं, कुछ खसूसियात होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर बारिश का पानी किसी नजिस चीज़ पर पड़ जाए और उसके पड़ने के बाद उसको भिगो दे तो वो पवित्र हो जाया करती है। जैसे कि अगर कोई नजिस वस्त्र जिससे असल नजासत को हटाया जा चुका हो, अपवित्रता को हटाया जा चुका हो, अगर आंगन में पड़ी हुई है, जैसे कपड़ा हमारा पड़ा हुआ है, तो अगर बारिश होती है, बारिश होने के बाद वो कपड़ा भीग जाता है तो वो पानी उसको पवित्र कर देगा और वो कपड़ा हमारा पवित्र माना जाएगा। और इसी में एक और बात जो है, जब कपड़े के ऊपर बारिश या वर्षा का पानी पड़ रहा है तो पड़ते ही पवित्र हो जाएगा। अब हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम उस पानी को पड़ने के बाद उस वस्त्र को निचोड़ें, जैसे कि बाद लोग होते हैं कि कहते हैं कि निचोड़ना आवश्यक है, लेकिन वर्षा के पानी में निचोड़ना आवश्यक नहीं। जैसे ही वो कपड़ा या वो चीज़ जो भीगी है वर्षा के पानी से, जैसे ही भीगती है वैसे ही पवित्र हो जाएगी और उसको निचोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और इसी में एक बात जो आती है वो ये, कभी कभी होता है बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है और किसी ऐसे स्थान पर या किसी ऐसे गड्ढे में पानी एकत्र हो जाता है जो देखने में छोटा सा है, यानी ना 3 बालिश चौड़ा गहरा और ये चीज़ है, और ना इतना किलो के मात्रा में इतना हो जाता है कि कुर कहा जा सके। तो ऐसे पानी का क्या हुक्म है, क्या उसे वर्षा का पानी कहा जाएगा, कुर का पानी कहा जाएगा, या उसके बारे में क्या आदेश है? तो कहा यह जाता है, हमारे फुकहा ने यह बताया है, हमारे मुज्तहदीन ने यह बताया है कि जब वर्षा का पानी बरस रहा हो, तो अगर पानी बरस रहा है तो जब तक पानी बरस रहा है तो उस गड्ढे में जमा हुआ पानी भले ही कुर से कम है उसके बारे में कुर का हुक्म लगाया जाएगा। यानी क्या? यानी ये कि अगर उसके अंदर हम कोई वस्त्र, कोई बर्तन या कोई और चीज़ पवित्र कर रहे हैं तो पवित्र हो जाएगी, कलील पानी का उसके ऊपर आदेश नहीं लगाया जाएगा। तो ये वो मसले थे जो वर्षा के पानी से संबंधित थे। तो हमने अपने इस प्रोग्राम में आपको मुजाफ के पानी के बारे में कुछ अहकाम को बताया, हमने ये बताया कि पानी कुर क्या होता है, कलील क्या होता है, कुर पानी किस प्रकार नजिस हो सकता है, या कुर पानी के आदेश क्या हैं, और हमने अपने इसी प्रोग्राम में आपके सामने ये भी बताया कि वर्षा का जल किसे कहते हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं। हाँ, अपने अगले प्रोग्राम में इसी पानी की किस्में और पानी के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।